नमो सिद्धाणम् नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सर्वसाहूणम् पञ्चणमो यारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेषिं पठमं भवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्रजामि अरहन्त शरणं पव्रजामि सिद्ध शरणं पव्रजामि साहु शरणं पव्रजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की समय सार ग्रंथ राज की आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की
मणुयणाइन्दुसूरधरं छत्तत्र पञ्चकन्याशो वलीपत्र मण्डलं मण्डलं जेठाय देवाय हरिहरे यन्मदरमर्दनं जेठाय दन्तिकन्दारयन् मायं वेमानन्दे कुशले धारं नमः
गोपिक स्वामी बनते पंच महागुरु भक्ति का उत्सगो गौ तस्लोचन अठ महापाड़िहेर संयुक्ताणम अर्हंताणम अठ गुण संपन्नाणम उद्लोय मथयम पैठ्याणम सिद्धाणम अठ पवेण माओ संयुक्ताणम आयरियाणम आयारादि सुदनाणोपदेशयाणम उगध्यायाणम तिरियन गुण पालन रयाणम सब साहूणम निच कालम अथेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख खौ कम खौ बोहिला हो सुगमण समाहि मरण जिन संपत्ति हो मध्यम वंदित्य सव्य सिद्धि धुवम चल मणोवम गईं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निणमो सुय केवली भयं प्रश्न ये था कि वास्तव में जीव क्या वस्तु है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी उत्तर देते हुए 49वीं गाथा में कह रहे हैं, यही गाथा अष्टपाहुड़ में है, यही गाथा प्रवचन सार में है, यही गाथा पंचाष्टिकाय में है और यही गाथा नियम सार में भी है। पांच ग्रंथों में एक ही गाथा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दी है, तो इससे स्पष्ट समझ में आता है कि गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में जीव कौन है, उसको कैसे पहचाने। आचार्य कहते हैं, अरसमरूपम गंधम अववत पंचेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणि दिट्ठ संथानम। हे भव्य जीव अथवा हे शिष्य, तुम जीव को अरस जानो, अर्थात जीव का खट्टा मीठा चरपरा आदि कोई स्वाद नहीं है। फिर कहते हैं, हे शिष्य जीवम अरूपम जान। जिनके पास ग्रंथ हो गाथा के साथ जो अन्वय हम लगा रहे हैं उसको मिला सकते हैं कि हे भव्य प्राणी तुम जीव को अरूप जानो। अरूप का अर्थ होता है जिसका कोई रंग नहीं है, ऐसा जानो। फिर कहते हैं कि हे भव्य, हे शिष्य तुम जीव को अगंधम जान। सुगंध और दुर्गंध से रहित जानो। फिर कहते हैं, हे भव्य जीवम अवत्तम जान। तुम जीव को स्पर्श रहित जानो। आठ प्रकार के स्पर्श जिसमें नहीं है ऐसा जानो। कठोर, कोमल, हल्का, भारी, गर्म, ठंडा, चिकना, रूखा, इन आठ प्रकार के स्पर्शों से जो रहित है ऐसा जानो। और शिष्य असद्दन जान जीवम, तुम जीव को सारे गम पधनी इन सात स्वरों से रहित जानो। और इन स्वरों का भी अगर विस्तार किया जाए तो कोमल और शुद्ध स्वर मिलाकर, तीव्र स्वर मिलाकर 12 स्वर हो जाते हैं। और वेस्टर्न म्यूजिक में भी सी सी शार्प ऐसा चलता है, डी डी शार्प, इस प्रकार कुल 12 हो जाते हैं स्वर। तो इन सब स्वरों से तुम रहित जानो। किसको? जीव को। और अलिंग गहनम, उसको किसी अनुमान गम्य चिन्ह या फिर बाह्य चिन्ह से पकड़ में आने वाला मत जानो। कई बार वैज्ञानिकों ने भी प्रयास किया कि वो क्या वस्तु है आत्मा, लेकिन किसी चिन्ह से वो पकड़ में आने वाली वस्तु नहीं है। ये 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंभकर्ण स्वामी कह रहे हैं कि वो किसी चिन्ह से, किसी संकेत से पकड़ में नहीं आ सकती। और अनिदित संठानम जान, ये शरीर के जितने आकार प्रकार है, छह प्रकार के जो संस्थान निर्दिष्ट है शास्त्रों में कि जो आकृतियां होती हैं छह प्रकार की होती हैं, मुंडक संस्थान सबसे यानी अधम श्रेणी का संस्थान माना जाता है, पाप प्रकृतियों में उसकी गणना है। ऊपर से देखें तो फिर सम चतुरस्थ संस्थान श्रेष्ठ आकार होता है, तीर्थंकरों के समान, बलभद्र नारायणों के समान। फिर दूसरा होता है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, शरीर का ऊपर वाला हिस्सा बहुत पुष्ट होता है लेकिन निचले भाग क्षीण होते हैं, न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध का अर्थ होता है वट वृक्ष, वट वृक्ष ऊपर से फैला होता है, नीचे उसका तना ऊपर के फैलाव की अपेक्षा सकरा होता है। बस इसी प्रकार जिस मनुष्य की आकृति ऊपर से परिपुष्ट हो लेकिन नीचे पैर, ऊपर के हाथ मोमबत्ती और पैर अगरबत्ती, नग्रोध परिमंडल। फिर एक स्वाति संस्थान होता है, एक वामन संस्थान होता है, एक कुब्जक संस्थान होता है और एक हुंडक संस्थान होता है। तो आचार्य कहते हैं अनिर्दिष्ट संस्थानम जीवम जानी ही, हे शिष्य, हे भव्य, तुम जीव को इन शरीर की आकृतियों से रहित जानो। ठीक है, जीव वैसा आकार बना लेता है लेकिन शरीर का आकार उद्गल द्रव्य का आकार है और जीव तो चेतन है, इसलिए इन शरीर के आकारों से भिन्न जानो। तो ये तो सब निषेधात्मक कथन हो गया कि जीव ऐसा नहीं है, 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 ऐसा नहीं है। सात प्रकार का नहीं है। कौन से सात प्रकार? रस रूप नहीं है, मैंने स्वाद नहीं है जीव का कोई, और रंग नहीं है और गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है और ध्वनियां भी नहीं है, स्वर भी नहीं है, शब्द रहित है, ये पांच इंद्रियों की पांच बातें होगी, तो इनसे रहित है जीव, अर्थात इंद्रियों से कभी जीव पकड़ में नहीं आने वाला। फिर मन से, तो बोलते हैं कि अलिंग गणम, कोई ऐसे चिन्ह से भी जीव पकड़ में नहीं आने वाला, तो उससे भी रहित बता दिया। और अनिदित्य संधानम, शरीर के आकारों से पकड़ने की कोशिश करो, तो बोलते हैं कि नहीं, सात प्रकारों से जीव पकड़ में आने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि इन सातों से रहित है। फिर सहित किससे है, आ रही ना बात समझ, क्योंकि जैन व्याख्यान शैली में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर क्या नहीं है इसको बताने के साथ साथ ये जरूर बताएंगे कि क्या है, और क्या है जब बताएंगे तो फिर उसके साथ ये भी बताएंगे कि क्या नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि निषेध और विधि, इन दोनों विधियों से, इन दोनों उपायों से किसी एक वस्तु को सिद्ध किया जाता है। तो फिर अब आचार्य महाराज एक विशेषण से कह रहे हैं कि जीव क्या है, तो बोलते हैं चेतना गुण वाला जो कुछ भी है वो जीव है, यानी जिसमें जानना और देखना चल रहा है, जो जानने वाला पदार्थ है, देखने वाला पदार्थ है, चैतन्य गुण से युक्त जो पदार्थ है वो जीव है, और जीव क्या क्या नहीं है वो बतला दिया। अब इस पर कितनी भी गहराई से आप विचार करते जाओ, उसकी गहराई में आप चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे। और टीका आप देखेंगे तो फिर जिनके पास ग्रंथ हो तो अच्छी लंबी लंबी पंक्तियां लिखी आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। एक पंक्ति यहां पुस्तक की तो कम से कम पांच छह लाइनों में जाकर के पूर्ण हो रही है, एक पूर्ण विराम पांच छह लाइन हो जाने के बाद में लग रहा है। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया। और इसके बाद बड़ा सुंदर कलश काव्य लिखा अंत में, इसकी व्याख्या का उपसंहार करते हुए आचार्य कहते हैं सकलमपि विहायान्नाय चित्तशक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाह्य संचित्तशक्तिमात्रं इममुपरिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मान्यनन्तं चित्तशक्तिव्याप्त सर्वस्व सारो जीव इयानयम् अतोतिरिक्ताः सर्वेपि भावाः पौद्गलिका अमी। चेतना शक्ति के अतिरिक्त, थोड़ा मन को शांत कर लो, मन को शांत करने में अगर कठिनाई हो रही हो तो गहरी सांस ले लो सुनते समय भी, क्योंकि ये बात थोड़ी एकाग्र होकर सुनने वाली बात है। डीप ब्रेथ्स ले लो, दो तीन गहरी सांस, मन को शांत करके एकाग्र करके सुनो। 2000 वर्ष पहले और 1000 वर्ष पहले कुंद कुंद गुरु महाराज और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा है। आंख बंद करके एक क्षण के लिए देखो कि वो चेतना शक्ति इस समय मुझ में भी प्रकाशमान है, आ गया। अब आचार्य कहते हैं कि उस चेतना शक्ति के अतिरिक्त जो कुछ है सबको छोड़ दो और केवल अपने आप में जो चेतना शक्ति मात्र है उसमें डुबकी लगाओ, फिर देखो क्या लग रहा है। केवल उस चेतना शक्ति को देखना, मन की जो तरंगे उठ रही है उनको उठ करके निकल जाने दो, कोई परवाह नहीं है। समुद्र वही रहता है, लहरें उठती है शांत भी हो जाती है। मन की लहरों को मत पकड़ो, वो लहरें जहां से उठ रही है जिस चेतना में से सब विस्तार हो रहा है उसको देखो। और यह जो सारे विश्व के ऊपर प्रकाशमान चेतन तत्व है वही परमात्म तत्व है, वही अपनी आत्मा है। और उसका कोई अंत नहीं है, क्या अलौकिक वस्तु है अपन। अपने मन के विचारों ने, अपनी कषायों ने और क्वचित कदाचित मिथ्यात्व के उदय ने अपने को बहुत छोटा बना कर रख दिया। अब अपने परमात्म स्वरूप को जानने के बाद मैं बोलना कितना कठिन है, किससे कहोगे मैं जा रहा हूं, क्या वो स्वरूप जाता है, मैं आ रहा हूं, क्या वो स्वरूप आता है, मैं बैठ रहा हूं, क्या वो स्वरूप बैठता है। अलौकिक स्वरूप है, बस इतना ही जीव है जो चेतना शक्ति से संपूर्ण व्याप्त है, ठसाठस भरा हुआ है, ज्ञान घन है, बस इतना ही जीव है। और इसके अलावा जो कुछ है वो सब या तो पुद्गल है या पुद्गल के संपर्क से उत्पन्न होने वाले विकार हैं। वो जीव नहीं है, वो परमात्म स्वरूप नहीं है। कितनी बड़ी घटना है, अब आचार्य कुंदकुंद स्वामी प्राकृत गाथाओं में बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं है जीव में, उसी की बात का विस्तार करते हुए। वो क्षण मात्र में तो सब काम हो जाता है, जो वहां तक पहुंच गया उसको समझ में आ गया होगा कि वो क्या चीज है। और फिर जो विचारों में ही अटक गए होंगे वो उतनी गहराई में नहीं जा पाए होंगे, लेकिन गहराई में जाना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि अपने पास वो ज्ञान आज भी है, वो शक्ति आज भी है। जिस प्रकार कोई भी खाने की वस्तु में से आप बतला सकते हैं कि इतना जीरा है, इतना नमक है, इतना मिर्च है और इतना ये सब आप विवेचन कर सकते हैं उसमें, उसी प्रकार इन सब मिश्रित अवस्थाओं में से आप चेतना पकड़ लें, सिर्फ चेतना को, तो फिर बाकी सारे जो विकार हैं और बाकी सारे जो संपर्क हैं, संसर्ग हैं, उनसे भिन्न उस जीव को पहचान सकते हैं। बस चेतना शक्ति से जो सर्वांग भरा हुआ है उतना ही जीव है। जीवस्य नत्ति वर्णो न विगंधो न विरसो न विफासो न विरूवण शरीरम न विसंठानं न संहननम। जीव का कोई रंग नहीं है, जीव की कोई गंध नहीं है, जीव का कोई स्वाद नहीं है, जीव का कोई स्पर्श नहीं है, जीव की कोई सुंदरता भी नहीं है। सुंदरता का अर्थ जो आंखों से देखने वाली सुंदरता, वो नहीं है। जीव का शरीर नहीं है। जीव का शरीर संबंधित आकार नहीं है। जीव का कोई संगणन नहीं है, यानी अस्थि बंधन जो होता है वो उद्गल द्रव्य से रचित है। जीवस्य नथि रागु न विदोषो नैव विद्यते मोह नोपच्छयाणकम् नोकम् चाविशेणत्थि। राग जीव का नहीं है, द्वेष जीव का नहीं है, मोह जीव का नहीं है, और प्रत्यय अर्थात कर्म बंध के जो हेतु हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये भी जीव के नहीं है। देखो, हमने पहले भी कहा था, जीव में होना और जीव का होना, उनमें फर्क है। कर्म भी जीव के नहीं है, नौकर्म भी जीव के नहीं है। जीवस्य नत्ति वग्गु न वग्गणा नेव पड्डया के नो अज्ज पट्ठाणा नेव अनुभाग ठाणानी। वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक, ये कर्मण वर्गणा संबंधित शब्द है, तकनीकी शब्द है, शास्त्रीय शब्द है, वो भी जीव के नहीं है। और जीव के अध्यात्म स्थान भी नहीं है। अध्यात्म स्थान जो होते हैं वो अंतरंग आत्मा में श्रद्धा आदि को प्रभावित करने वाले हैं, जो कर्मोदय जनित विकृत भाव हैं, वो जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डिसीज, आध्यात्मिक रोग, वो भी जीव के नहीं है। वो शरीर में नहीं होते वो रोग, वो अंदर अपनी मान्यता में होते हैं। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व जाए, ये उसकी मान्यता है। तो ये अज्जपट ठाण, वो अध्यात्म स्थान का उसको, पर नहीं वे अनुभाग ठाणानी, अनुभाग स्थान भी जीव में नहीं है। वो कषाय के उदय से एक भाव बनता है तो उसमें अनुभाग स्थान आ जाते हैं। जीव श्रृणथि के जो ये ठाणान बंध ठाणा वा नेवय उदय ठाणा नमगण ठाणया के। योग स्थान भी कोई जीव के नहीं है, बंध स्थान भी कोई जीव के नहीं है, उदय स्थान भी जीव के नहीं है, मार्गणा स्थान भी, कितनी मार्गणा है, वो भी जीव की नहीं है। नो फिद्रिबंध ठाणा जीवस्सन संकिलेश ठाणा वा नेव विशोहि ठाणा नो संजम लद्धि ठाणा वा। स्थिति बंध के जो स्थान है वो भी जीव के नहीं है। संकलेश के जो स्थान है तीव्र कषाय के, वो भी जीव के नहीं है, जीव में है, याद रखते रहना। विशुद्धि स्थान भी जीव के नहीं है। इसको अगर ध्यान से सुन लो तो अंतःचक्षु खुल सकते हैं। सुनने की एक्टिंग मत करना, मैं तो गए काम से, क्योंकि अनादिकाल से यही चला है अपना, समव शरण से भी लौट चुके हैं। तो विशुद्धि स्थान भी जीव के नहीं और संयम लब्धि स्थान भी जीव के नहीं है। देखो, इन शब्दों के अर्थ को जानने के लिए समय सार से पहले दूसरे ग्रंथों का स्वाध्याय अनिवार्य है, नहीं तो इन शब्दों को क्या समझेंगे कोई। एकदम सीधा समय सार पढ़ो तो इनका अर्थ कौन बताएगा, बताओ। अध्यात्म स्थान का अर्थ किसी से पूछ लो, क्या बताते हैं, बता ही नहीं सकता। फिर ये संयम लब्धि स्थान क्या वस्तु है, असंख्यात लोक प्रमाण संयम लब्धि स्थान एक छठे गुण स्थान में होते हैं, वो होते क्या है। संयम के साथ कषायों की हानि रूप जो स्थान बनते हैं परिणामों में, अपने भावों में, जो संयम के साथ कषाय की हानि के स्थान बनते हैं उनको संयम लब्धि स्थान बोलते हैं, वो भी जीव के नहीं है। नेव जीव ठाणा न गुण ठाणा अति जीवस ಜೇನದು ಏದೇ ಸಭೆ ಉಗ್ಗಲದ ಬಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಅವ್ರ ಜೀವ ಸಮಾಸ ಚೌದ ಜೀವ ಸಮಾಸ ಉನ್ನೀಸ್ ಜೀವ ಸಮಾಸ ನಬ್ಬೆ ಅಧಿಕ ಜೀವ ಸಮಾಸ ವಿಸ್ತಾರ ಬದಲಾ ಜಾತೆ ವೇ ಸಬ್ ಜೀವ ಕೇ ನೀ ಹೈ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಜೀವ ಕೇ ನೀ ಹೈ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಜೀವ ಕೇ ನೀ ಹೈ ಅಬ್ ಶಂಕಾ ಸಬ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಕ್ಯಾ ಬಚಾ ಕ್ಯಾ ಪರ ಕ್ಯೂ ನೀ ಹೈ ಜೀವ ಕೇ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ದೇತೆ ಹೈ ಕ್ಯೂಕಿ ಏದೇ ಸಬ್ವೆ ಪುಗ್ಗಲ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಯೇ ಸಬ್ ಪುದ್ಗಲ್ ದ್ರವ್ಯ ಕೇ ಪರಿಣಾಮನ್ ಹೈ ಯಾ ತೋ ಪುದ್ಗಲ್ ದ್ರವ್ಯ ಕೇ ಪರ್ಯಾಯ ಹೈ ಯಾ ಪುದ್ಗಲ್ ದ್ರವ್ಯ ಕೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇ ಹೋನೆ ವಾಲಿ ಜೀವ ಕೀ ವಿಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಹೈ ಅಕೇಲೆ ಜೀವ ಕೇ ಯೇ ಕುಛ್ ಭೀ ನಹೀ ಅಗರ್ ಆಪ್ ಏಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ ದೇಖೇ ಅಕೇಲೆ ಜೀವ ಕೋ ದೇಖೋ तो उसके कुछ नहीं। जैसे आपने केसर वाला दूध ग्लास में लिया और फिर पीना प्रारंभ किया, किसी ने पूछा कि शक्कर ज्यादा तो नहीं डली, तो फिर आप तुरंत उत्तर नहीं देते। अब उसने पूछा और आप बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, एक क्षण का अंतराल आता है, उस अंतराल में बड़ा काम होता है। क्या काम होता है? अपना ध्यान केसर और दूध से हटकर सिर्फ शक्कर को पकड़ने लगता है उस क्षण में, और उस समय उसकी मात्रा अधिक है या अल्प है वो अपने ज्ञान में आ जाती है। तो इसी प्रकार अभी ये सारी मिश्रित अवस्थाएं चल रही है संसार अवस्था में, लेकिन इस मिश्रण में से भी आपको वो पकड़ना है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये सब जीव के नहीं है, ये सब नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीव के नहीं, ये सब नहीं है ऐसा कहोगे तो फिर तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा। ऐसा भी एक मत है, ऐसा भी एक संप्रदाय है जो मानता है कि ये सब झूठा है, कुछ नहीं है, ये केवल अपने को लग रहा है कि है, वास्तव में नहीं है। तो उसको जैनाचार्यों ने ये पूछा कि तुम अगर कहते हो कि ये सब कुछ नहीं है तो तुम हो कि नहीं हो? जो ये कह रहा है कि कुछ नहीं है वो है कि नहीं है? तो अब उसका क्या उत्तर देगा वो? तो ये नहीं है ऐसा जैनाचार्य नहीं कह रहे हैं। जैनाचार्य कह रहे हैं कि है तो सही है, लेकिन ये किसके नहीं है? जीव के नहीं है ऐसा कह रहे हैं। पर देखिए ये एक दृष्टि है कहने की। अब अगर आप ऐसा सर्वथा मान लो कि ये जीव के नहीं है तो फिर तो मोक्ष पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, ही नहीं जीव के, कुछ भी नहीं। अभी आप इसी वक्त मुक्त हैं, कुछ नहीं करना आपको, और फिर चाहे नरक गति में भी कोई चला जाए वहां भी वो सिद्ध है, किरियंज गति में चला जाए तो वहां भी वो मुक्तात्मा है। तो ऐसा अभिप्राय नहीं है यहाँ। यहाँ पर अभी जीव के स्वरूप को पकड़ने की बात कर रहे हैं, शुद्ध जीव, वो जो जीव तत्व जीव आत्मा है उसको पहचानने की बात कर रहे हैं। इसलिए इन सबको अलग करके फिर बतला रहे हैं कि आत्मा इन सब से न्यारा है, निराला है। और फिर बाद में उसी बात को संभालने के लिए आचार्य महाराज एक गाथा लिख रहे हैं। ये बहुत आचार्य कुनकुन महाराज का उपकार है कि वो जब भी कोई ऐसी गहरी बात करते हैं तो उसके बाद फिर उनको ऐसा लगता है कि कहीं इस गहरी बात में कोई भटक ना जाए, अर्थ का अनर्थ निकाल करके कहीं भ्रमित ना हो जाए, तो फिर तुरंत दूसरी बात का भी स्पष्टीकरण कर देते हैं कि भाई अभी हवा में मत उड़ने लगो, ये भी सुन लो। क्या? व्यवहारेण द्वैदे जीवस हमंति वर्णमा दिया गुण थानंता भावा न दुखे निक्षयणयस। व्यवहार की अपेक्षा से वर्ण को आदि लेकर गुणस्थान पर्यंत के जितने भाव हैं वो सब जीव के ही हैं। व्यवहार से सब जीव के हैं, क्योंकि जीव उनके सबके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो जुड़ा हुआ है तो व्यवहार से जीव के हैं। और व्यवहार जो है वो कोई अंधाधुंध वस्तु नहीं है, निराधार नहीं है। अब व्यवहार किसी का भी कैसा भी व्यवहार हो ऐसा थोड़ी चलता। अब जैनाचार्यों ने एक दृष्टांत दिया है कि अगर कोई कहता है कि मैंने आकाश में से फूल तोड़े और फिर वंध्यास्त्री के पुत्र को उसकी माला बना करके पहना दी, अपने तीसरे और चौथे हाथ से, तो जिस प्रकार यह कथन मिथ्या है, ये व्यवहार से भी असत्य है, वैसे ये जो कथन है ये मिथ्या नहीं है, ये आधार सहित है। अब आकाश में फूल होते नहीं तो वो कथन निराधार हो गया, इसलिए वो व्यवहार नहीं नहीं हुआ। और वंध्या नारी के पुत्र नहीं होता तो उसके पुत्र को माला पहनाने की बात भी मिथ्या हो गई। और फिर तीसरे और चौथे हाथ होते नहीं आदमी के, अब कोई देव विक्रिया से बना ले तो बात अलग है, लेकिन मनुष्य के तो नहीं होते, तो उन हाथों से उसको माला पहनाने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो ये व्यवहार नय भी नहीं है। पर व्यवहार नय उसको कहते हैं जो संयोग से बनने वाली, घटित होने वाली जो सत्य घटनाएं हैं उनका कथन करने वाला व्यवहार नय है। तो इसलिए व्यवहार नय से ये सारे के सारे भाव वर्ण को आदि लेकर गुणस्थान तक के जितने भाव हैं सब जीव के हैं। लेकिन नदु के निश्चय से कोई भी जीव के नहीं है। ये दो दृष्टियां जब होती है तब वस्तु पकड़ में आती है। दोनों बातें समझ लो तो फिर पूरी बात समझ में आएगी। अगर व्यवहार नय को अकेले पकड़ कर चलोगे तो फिर निश्चय छूट जाएगा, और अकेले निश्चय को पकड़ कर चलोगे तो फिर व्यवहार छूट जाएगा। और वस्तु क्या निश्चय रूप है या व्यवहार रूप है? नहीं, वस्तु निश्चय और व्यवहार इन दोनों से जो पृथक समझ में आने वाली चीज है वो है। ये तो समझने के साधन, नय का अर्थ होता है नयति इति नयः, वस्तु स्वरूपम नयति इति नयः, जो ज्ञान को वस्तु के स्वरूप तक ले जाए उसको नय कहते हैं। व्यवहार नय अपनी अपेक्षा से वस्तु स्वरूप दिखाता है और निश्चय नय अपनी अपेक्षा से दिखाता है। दोनों नयों से वस्तु स्वरूप जब समझ में आता है तब फिर स्पष्ट समझ में आ जाता है कि इस समय अवस्था और संयोग की अपेक्षा से मैं ऐसा हूं, और निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो निश्चय से मैं ऐसा हूं। दोनों बातें जब समझ में आती है तब आत्मा की पहचान होती है। फिर शंका ये होती है कि निश्चय से जीव के ये सारे जो भाव बतलाए हैं वर्ण को आदि लेकर गुणस्थान तक के, क्यों नहीं है निश्चय से जीव के? तो आचार्य उत्तर देते हैं, ए ही संबंधो जहेव खीरो दयम मुणि दव्वो नय हुंति तस् ताणिदु उग ओग गुणादिगो जम्मा। बोलते हैं कि इन सब का संबंध है जीव के साथ, और संबंध कभी एक वस्तु में नहीं होता, संबंध दो में होता है। इसलिए दो एक नहीं है। क्या अद्भुत ढंग से समझाया, समझ में आया कि नहीं? ध्यान बढ़ गया क्या? कहा कि ये सब संबंध से होने वाली अवस्था है, और संबंध कभी एक का नहीं होता। मेरा मुझसे संबंध हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। संबंध कम से कम दो का होता है, तो दो का होता है इसलिए स्पष्ट है कि वो एक नहीं है। आ रहा है कि नहीं? पर संबंध कैसा है ये? जहेव खीरोदयम, दूध में पानी मिला दो तो कैसा मिल जाता है, बिल्कुल एकदम वो एक ही लगने लगता है, वैसा संबंध है अपना इन भावों के साथ, एकदम ऐसा मिक्स हो गया है जीव पुद्गल के साथ कि बिल्कुल दूध पानी जैसा मिश्रण हो गया है। लेकिन फिर भी दूध का पानी नहीं है, पानी का दूध नहीं है, पानी अलग है दूध अलग है। इसी तरह जीव का ये सब संबंध नहीं है और इन संबंधों का ये जीव नहीं है, पुद्गल का जीव नहीं है, जीव का पुद्गल नहीं है, इसलिए निश्चय से ये सब जीव के नहीं है। फिर शंका उठती है कि व्यवहार ने क्यों इनको जीव का कह रहा है जब निश्चय से ये जीव के नहीं है। और फिर एक हेतु और दिया आचार्य कुंकुम स्वामी ने कि जीव में जो चेतना है वो चेतना इन सब में नहीं है। चेतना आप देखने जाओगे तो ये जितने नाम लिए थे वर्ण को आदि लेकर गुणस्थान तक, इनमें कहीं भी आपको चेतना नहीं प्राप्त होगी। चेतना आपको सिर्फ जीव में मिलेगी, इसलिए जीव इन सब से अलग है। और अब कहते हैं कि व्यवहार नय से इनको जीव का क्यों कहा गया है, तो बता दें बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। पंथे मुस्संतम पश्यदूण लोगा भणन्ति व्यवहारी मुस्सदेशो पंथो न पंथो मुस्सदे कोई तजीवे कम्माणम नो कम्माणं च पश्यदुं वर्णम जीवस्येष वर्णो जिणे व्यवहारदो उक्तो गंधरस फास रूपा देहो संठान माया जीय सवे व्यवहारस्य निच्छेदन्नु विवदसंति। कोई ऐसा मार्ग होता है जहां से यात्रा करना संकटपूर्ण होता है। कई स्थानों पर आपको ऐसे मार्ग मिलेंगे कि वहां लोग मना करते हैं कि अभी आप रात में मत निकलना वहां से, ये रास्ता जो है लूटता है। उनके कहने का तात्पर्य क्या है कि इस रास्ते में चोर लुटेरे हैं और वो तुम्हें सुरक्षित नहीं पहुंचने देंगे, ये उनका अभिप्राय होता है। आचार्य कुंगुन स्वामी कह रहे हैं कि पंथे मुस्संतम, जिस रास्ते में मुसाफिर लुटते हैं उस रास्ते को व्यवहारी जन क्या कहते हैं, ये रास्ता लूटता है। नया पंथो मुस्सदे कोई, कभी रास्ता किसी को नहीं लूटता। लूटते कौन है, लुटे रहे, लेकिन व्यवहार से जिस रास्ते में लुटेरे लूटते हैं उस रास्ते को ये कहा जाता है कि ये रास्ता लूटता है। उसी प्रकार जीव में कर्मों के नौकर्मों के वर्ण गंध रस स्पर्श रूप देह संस्थान आदि देखकर व्यवहार से ये कहा जाता है कि वासुपूज्य भगवान लाल थे, पार्श्वनाथ भगवान हरित वर्ण थे, मुनि सुव्रत भगवान नील वर्ण थे, चंद्रप्रभ स्वामी श्वेत वर्ण थे, ऋषभदेव भगवान महावीर स्वामी स्वर्ण वर्ण थे, ये व्यवहार से कहा जाता है। और व्यवहार से कौन कहते हैं, निश्चय अनुभव दिशंति, बोले कि निश्चय को जानने वाले भी व्यवहार से यही कहते हैं। वही उदाहरण याद कीजिए कि स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है तो फिर वहां भी भले सम्यक दृष्टि जीव जाए एडमिशन कराने, उसको पता है कि आत्मा शरीर नहीं है, और फिर ये सारे जो मैंने बच्चों के नाम रखे हैं, आत्मा का कोई नाम नहीं होता, वहां हेडमास्टर के पास जाकर तो उसको वही नाम लिखवाना होगा। वहां जाकर अगर वो बोले, हेडमास्टर पूछे कि क्या नाम है बच्चे का, अरे क्या आत्मा का कोई नाम होता है, तो हेडमास्टर बोलेगा अपने पट्टे वाले से प्यून से कि साहब को ऑटो में बैठा देना मेंटल हॉस्पिटल के लिए, तो वहां वो इलाज करा ले, तो उसको पागल समझा जाएगा। जो निश्चय की बात को व्यवहार में कहे, व्यवहार व्यवहार के स्थान पर है, निश्चय निश्चय के स्थान पर है, दोनों को अपने स्थान पर सुरक्षित रखिए। निश्चय को व्यवहार में मत प्रविष्ट कराओ और व्यवहार को निश्चय में मत प्रविष्ट कराओ। जो व्यवहार को निश्चय समझता है उसके लिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश व्यर्थ है। व्यवहार मेव केवल मवैत यस्तस्य देशना नास्ति। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि जो व्यवहार को ही निश्चय समझता है उसके लिए जैन धर्म का उपदेश ही नहीं है। तो व्यवहार को व्यवहार समझो, निश्चय को निश्चय समझो। ये गुणस्थान आदि वर्ण आदि जितने भाव है व्यवहार से है जीव के, स्वीकार कर लो, पर निश्चय से, क्योंकि इनमें किसी में भी चेतना नहीं है इसलिए ये जीव नहीं है। जिसमें चेतना है मात्र वही जीव है निश्चय से। अब स्पष्ट हो गया, राग जीव क्यों नहीं है? क्योंकि राग चेतन में होता है लेकिन अचेतन होता है। राग जानता है, राग देखता है? नहीं, राग अचेतन है, पर वो पुद्गल की श्रेणी वाला अचेतन नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। पुद्गल द्रव्य जैसा अचेतन है ना, वैसा अचेतन राग नहीं है। इसलिए आचार्य अमृत सिंह स्वामी ने इसी समय सार में आगे चल करके कहा है कि राग चिदाभास है। जैसे गर्मियों के समय जल दिखता है ना, आप रोड को दूर तक के देखोगे तो दूर आपको पानी दिखाई देगा, वो जलाभास है, जल नहीं है। वैसे ही ये राग है, तो अपने अंदर होने वाला राग ये चिदाभास है, चित्त नहीं है। ये चेतन जैसा लगता है लेकिन चेतन नहीं है, तो उस अपेक्षा से अचेतन है। लेकिन पांच प्रकार के जो अचेतन द्रव्य है उस रूप भी नहीं है राग। राग किसकी पर्याय है बताओ? उद्गल द्रव्य की पर्याय है या जीव द्रव्य की? उद्गल द्रव्य की पर्याय है राग। तो चलो इसको हमने ऐसे ठोका, अब इसके अंदर क्यों नहीं होता राग द्वेष? राग द्वेष जीव की विकारी पर्याय है, भूलना मत। ये विकारी पर्याय भी पुद्गल की नहीं जीव की है, लेकिन राग जीव का लक्षण नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं है, विकार है। जैसे स्फटिक मणि को आप रख दो किसी लाल कपड़े के ऊपर, वो लाल दिखता है। अब स्फटिक में ऐसी शक्ति है कि लाल रंग पर रखने पर लाल दिखेगा, नीले पर रखने पर नीला दिखेगा। इसी प्रकार जीव में भी वैसी शक्ति है, उस शक्ति का नाम है वैभाविकी शक्ति। कि जब कर्म का उदय आएगा तो जीव में वैसे विकारी पर्याय उत्पन्न होंगी, वैसे विकार उत्पन्न होंगे, जीव में होंगे, लेकिन फिर भी वो जीव के शुद्ध स्वभाव नहीं है। इसलिए राग को भी, राग से भी जीव को भिन्न निश्चय ने बतलाता है। और फिर एक दूसरे ढंग से भी आचार्य महाराज इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथ भवे जीवाणन संसार थाण होंत वर्णादि संसार प्रमुख कारणम नथि भुवन्नादो की। अगर बोले कि तुमको इस तरीके से नहीं समझ में आता तो हम दूसरे और सरल तरीके से समझाते हैं। अब अगर तुम ये मानते हो कि ये शरीर आदि गुणस्थान आदि सब जीव के हैं, तो फिर ये सब मोक्ष में क्यों नहीं है? मोक्ष में जीव है या नहीं? नहीं है। अगर कहोगे कि नहीं है तो फिर वो बौद्ध मान्यता है। बौद्ध मत की ये मान्यता है कि मोक्ष में जीव का अभाव हो जाता है, जीव रहता ही नहीं, समाप्त, न रहे बांस न बजे बांसुरी, बौद्ध मत है। लेकिन और कोई मत ऐसा नहीं मानता कि मोक्ष होने के बाद जीव का अभाव हो जाता है। तो अगर मोक्ष में जीव है और वहां पर ये सब नहीं है, तो अब क्लियर हुआ कि नहीं कि ये जीव नहीं थे? आ रहा समझ में? जीव के रहते हुए भी जो न रहे वो जीव कैसे हो सकते हैं? अब स्पष्ट हो गया? तो फिर अब क्या समझ में आया कि जीव क्या है? कितने प्रकार से समझाए, ऐसा वर्णन कहीं मिलेगा आपको? अभी तक अपन इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं समय सार का, कितने कितने प्रकार से बार बार उस जीव का स्पर्श करा रहे हैं। पर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है। अभी आप यहां पर सुन रहे हैं, यहां तो आप इंटेलेक्चुअली बौद्धिक स्तर पर आप सारी बातों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रायोगिक रूप में थोड़ा थोड़ा इसको लाने का प्रयास करना, तब जाकर के वो अभ्यास कहलाएगा। अभी तो क्या है कि श्रवण और ग्रहण हुआ, लेकिन श्रवण ग्रहण के बाद अगर अभ्यास आपने नहीं किया तो फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता। ये बात जैनाचार्यों ने ही कही है, समाधि तंत्र में ये उल्लेख है कि अभ्यास से ही कल्याण होता है, जानने से कल्याण नहीं होता, समझने से कल्याण नहीं होता, समझाने से कल्याण नहीं होता, अभ्यास के बिना कल्याण नहीं होता। अभ्यास कैसे करोगे आप? अभ्यास करना कोई कठिन काम नहीं है, बार बार बीच में एक बार याद कर लो अपने आप को, पूछो अपने आप से, भूल तो नहीं गया, कौन है तू? दर्पण के सामने विशेष रूप से अपनी आंखों के प्रतिबिंब में अपनी आंखों को देखकर पूछना, कौन है तू? याद है समय सार क्या कहा था आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने क्या सिखाया था? कौन है तू? एक मुस्कान आ जाएगी चेहरे पर। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे, जितनी बार आप स्मरण करेंगे उस स्वरूप का, तो मन शांत हो जाएगा और वो शांति ज्यो ज्यो बढ़ती जाएगी, क्यों त्यों कषायें शांत होती जाएंगी और एक दिन वो शक्ति प्रकट हो जाएगी कि आप काम पूरा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। बस उस शक्ति को बढ़ाना है, भूलना नहीं है उसको, और ऐसा कहना भी गलत है भूलना नहीं, याद रखना है। भूलना नहीं बोलने से दोनों शब्द नेगेटिव हो जाते हैं, भूलना भी नेगेटिव है और नहीं भी नेगेटिव है, तो याद रखना। बीच में खाना खाते समय जैसे ही तल्लीनता आई तो फिर ख्याल करना कि ये क्या, मैं कौन हूं, अनाकुल स्वभाव है मेरा, मेरा सुख मुझ में है, इसमें नहीं है, बर्फी में नहीं है, नमकीन में नहीं है, फलाने संगीत में, विविध भारती, रेडियो मिर्ची, MyFM, वहां मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख मुझ में है। इस प्रकार अभ्यास करते करते देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ भाग्य भी साथ दे दे और आपका पुरुषार्थ भी साथ दे तो फिर कुछ प्रकाश आ सकता है जीवन में। अब इसके बाद आचार्य कुंदकुंद स्वामी ये बतलाएंगे कि अगर फिर भी तुम दुराग्रह रखते हो कि नहीं हम तो जो पहले मानते थे वही मानेंगे, तो उसमें क्या नुकसान होगा, वो आचार्य महाराज फिर बताएंगे। जावाणी के ज्ञान दे
सुझे लो कालो सुवाणी मन सत्यम आवे सुनो जावाणी भारती तुझ जपो दिन रहें जो तेरा शरणागत सो आवे सुनो।
Yeah.
वो चालू कर क्या कह रहे हैं? कौन सा दो मोक्ष कल्याण क्या आज
को अनंतनाथ और
आज सूर्य और चंद्रमा का एक ऐसा योग है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि आज जिसकी मीन राशि हो वो यदि कोई अच्छा कार्य करना चाहे तो उसके लिए आज वर्ष का श्रेष्ठ दिन है, जिसकी मीन राशि हो उसकी लिए। क्या कौन सा नियम? वो नियम तो उसके अलग दिन होते ना, उसके तो अलग दिन।